जितना किसको समझाते हो उतना ज्ञान इमर्ज होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ज्ञान देना भी तो लेना है, लेने में तो खुशी होती है या टेंशन होता है? कोई बढ़िया चीज आपको दे तो टेंशन होगा या खुशी होगी? ब्राह्मण जीवन अर्थात टेंशन से फ्री जीवन, खुशी में नाचने की जीवन। डबल विदेशियों में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? जो कभी कभी खुश होते हैं वो हाथ उठाओ। कौन सा बोझ है आपको जो खुश नहीं रहते हो? बोझ उठाना अच्छा लगता है क्या? दूसरे वर्ष से किसने हाथ उठाएंगे? सदाकाल वालों में या ट्राई करने वालों में? ट्राई नहीं करो, कोशिश करेंगे नहीं। कोशिश कहा तो माया कशिश करेगी, इसलिए अभी करना ही है। मास्टर सर सचिवान कहती है जो चाहे सो करे। कमजोर होते हैं उनकी चाहना अच्छी होती है लेकिन कर नहीं सकते, तो ट्राई नहीं करो। मेंढक होते हैं तो क्या करते हैं? ट्रां ट्रां करते हैं, वो होते हैं बरसाती मेंढक। तो ऐसे नहीं बनना। ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो रहेगा कौन? भारतवासी अथवा डबल विदेशी सदा पक्की रहना, कच्चे को माया खाई लेती है। डबल विदेशी अर्थात सेवा और याद के डबल फोर्स में रहने वाले। अच्छा
पुरानी है पेज 673 की 106 पेज, हेडिंग दिया है अलौकिक खजाने के मालिक। उस दोनों समझते हो, वर्तमान समय की स्थिति प्रमाण आप सभी का कौन सा स्वरूप विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सकता है? उस स्वरूप को जानते हो? इस समय आवश्यकता है माउथ नाइट हाउस के स्वरूप की, तो क्या ऐसा अनुभव करते हो कि आलमाइटी बाप की संतान हम भी माइट हाउस बने हैं? सर्वशक्तियां अपने में समाई हुई समझते हो? सिर्फ शक्तिवान नहीं लेकिन सर्वशक्तिवान, जिनका सर्वशक्तियां संपन्न दैन है उनके लिए अप्राप्त तो कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। जैसे देवताओं के लिए गायन है अप्राप्त तो कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, वैसे आप ब्राह्मणों का ये गायन है कि अप्राप्त तो कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। लेकिन मात्र सभी मालिक बैठे हो ना, सब शक्तियों के खजाने के मालिक हो ना। खजाने के मालिक कभी ये संकल्प भी कर सकते हैं क्या कि हमारे पास सही शक्ति नहीं है अथवा माया को परखने की शक्ति नहीं है, ये ज्ञान के खजाने को संभालने की शक्ति नहीं है, वह संकल्पों को समाने की शक्ति नहीं है, वह खजाने को सुमिरन करने की शक्ति नहीं है? जितना भी कोई कार्य में बुद्धि विस्तार में गई हो लेकिन विस्तार को एक सेकंड में समाने की शक्ति नहीं है क्या? ऐसे मालिक से क्या ये बोल ये संकल्प भी हो सकता है जो मालिक के बालक है? अगर होता है तो उसको क्या कहें? उस समय की स्टेज को या स्थिति को क्या मालिकपन की स्थिति कह सकते हैं? मालिक सदा मालिक ही होता है। अभी अभी मालिक अभी अभी भिखारी, ऐसे मास्टर सर सचिवान होते हैं क्या? मालिक से बार बार रायल भिखारी क्यों बन जाते हो? बाप के सामने भी जब बच्चे आकर ये कहे कि बाबा हमको मदद करना, शक्ति देना और सहारा देना, इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको रायल भिखारी पन नहीं देंगे? ये सब है भक्ति के संस्कार। क्या बाप से आकर के शक्ति मांगना, जैसे देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो और मैं नीच कपटी पापी हूँ, वैसे ही बाप के आगे मास्टर सर शक्तिवान आकर कहता है कि बाबा आप तो सर्वशक्तियों के सागर हो लेकिन मुझ में वो शक्ति नहीं है, मैं निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, जैसे संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और मैं माया के दुगनों से घबरा जाता हूँ, तो क्या ये वो भक्ति के संस्कार नहीं हुए? सुनाया था ना कि बाप जो है जैसा है उसको वैसा न मान करके भावना के वश सर्वव्यापी कहते, उसको भी आप बाप की इंसल्ट कहते हो ना। कड़े के तरह शब्द है गाली, गाली कहते हो। वैसे ही अपने श्रेष्ठ स्वभाव मास्टर सरस्वतीवान मास्टर ज्ञान प्रेम आनंद सभी के सागर, अपने लिए फिर कहे कि जरा भी शक्ति की कमी है तो क्या उनको मास्टर सागर कहेंगे? एक तो स्वयं को मास्टर ज्ञान का सागर आनंद का सागर कहे और फिर ये कहे तो अपनी इंसल्ट करना नहीं हुआ क्या? स्वयं ही स्वयं की इंसल्ट करना क्या ये ब्राह्मणों का सम्मान है? ये बोल बोलना भाई, ये संकल्प करना, इससे अपनी भी इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो। कैसे करते हो? एक तो बाप जो दाता है स्वयं ही देने वाला है और किसी के कहने से देने वाला नहीं है, तो दाता को मनुष्य बना देते हो। दाता को मनुष्य बनाना क्या ये इंसल्ट नहीं है? कहने से कौन करता है? मनुष्य करता है। दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले बनते हो, इससे क्या सिद्ध होता है? क्या बाप को अपना कर्तव्य करना भूल गए? क्या इसलिए आप बाप को स्मृति दिलाते हो? बाबा आप तो मददगार हैं ही, इसलिए मदद करना, इस कहने से क्या कहा जाए? जबकि गायन ये है कि ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप, प्राप्ति स्वरूप के पास अप्राप्ति कहाँ से आई? इसलिए कहा कि ब्राह्मणों की स्टेज पावर हाउस है। अब पावर हाउस से परे की भाषा समझे, पावर हाउस के ये बोल नहीं होते हैं। अभी तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय समीप आ रहा है। कौन से सन की बात हुई? फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय समीप आ रहा है, 73 में बोला। और अब कौन सा सन चल रहा है? कितने वर्ष हो गए? तो अभी फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, उसे समीप समय कहेंगे कि लंबा समय कहेंगे? फाइनल रिजल्ट तो 77 में ही निकल चुका, बाकी निकलना तो अभी भी है। तो रिजल्ट निकलता है तो नंबरवार रिजल्ट निकाला जाता है, ऐसे नहीं थर्ड क्लास का रिजल्ट तो पहले निकल जाएगा। पहले किसका आउट करते हैं? डिस्टिंक्शन मार्क्स। तो बोला अभी तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय भी समीप आ रहा है। फाइनल रिजल्ट के समय पर कोई पहला अर्थात इसी वर्ष में अपने आप को जिस भी स्टेज पर या जिस भी स्थिति में स्थित करना चाहते हो उसके लिए ये चांस है। ऐसे थोड़े समय के अंदर अपन को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प बोल और कर्म, इन तीनों में समानता का अभ्यास करना, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। जैसे बुद्धि में ये सोचते हो समझते हो कि हम दाता के बच्चे हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर हो जाता है। संकल्प में सोचते हो कि हम सर्व आत्माओं से ऊंचे ब्राह्मण हैं, लेकिन बोल और कर्म में अंतर हो जाता है। सोचते हैं कि विश्व तो तीनों ही समान हो जाए क्या? मन वचन और कर्म, कथनी करनी एक हो जाए, सोचना करना एक हो जाए, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बात समान। तो क्या ऐसे अपन को बात समान बनाने के लिए समय दे रहे हैं? 6 मास के बाद इस रूहानी सेना के महावीर घोड़े सवार और प्यादे अर्थात प्रजा सभी प्रत्यक्ष होने लगेंगे। कौन से सन में बोला? 73 में, अर्ध में। मैंने 74 से क्या होगा? प्रत्यक्षता होना शुरू होगी। पहले कौन प्रत्यक्ष होंगे? है महावीर, महारथी, घोड़े सवार, फिर प्यादे अर्थात प्रजा भी प्रत्यक्ष होगी लास्ट में। अब तक आपस में ही प्रत्यक्ष नहीं, जब तक आपस में ही प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो विश्व के आगे प्रख्यात कैसे होंगे? पहले आपस में प्रत्यक्षता होगी या विश्व में प्रत्यक्षता होगी? पहले आपस में प्रत्यक्षता होगी। कि कौन लाइट और माइट हाउस बना है और विश्व के आगे प्रख्यात नहीं होंगे तो फिर प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने के लिए, बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए अब लास्ट पुरुषार्थ व लास्ट फास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया? फास्ट पुरुषार्थ कौन सा है? जो फास्ट ही लास्ट है, इसको जानते हो? कौन सा पुरुषार्थ सामने आता है? फास्ट पुरुषार्थ की विधि कौन सी है कि जिससे बाप का मन बन जाए? ये सिद्धि होगी, बिना विधि के सिद्धि नहीं हो सकती है। बहुत बार सुनाया है, सिर्फ एक शब्द है, लास्ट फास्ट पुरुषार्थ की विधि है प्रतिज्ञा। कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि ये काम करना ही नहीं है अथवा ये काम अभी अभी करना है, प्रतिज्ञा की विधि ये है कि लास्ट इज फास्ट। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बना। प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है तो फास्ट पुरुषार्थ एक सेकंड का होना चाहिए, क्योंकि सुनाया कि लास्ट पेपर की जो रिजल्ट आउट होना है तो लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? एक सेकंड का समय मिलेगा। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है, कितना? एक सेकंड। और पेपर भी फिक्स है। क्या पेपर है? पेपर सुनाया कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। एक सेकंड में आर्डर हुआ नष्टो मोहा बन जाओ, तो एक सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप न बने, अपन को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में समय गवाई दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगाई दिया तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो समय भी एक सेकंड का मिलना है, ये भी पहले से सुनाए रहे हैं, पेपर भी पहले से सुनाए रहे हैं, तो कितने पास होना चाहिए? फास्ट पुरुषार्थ की विधि प्रतिज्ञा से अपने को प्रख्यात करो, बाप को प्रख्यात करो अर्थात प्रतिज्ञा से प्रत्यक्षता करो। ये बात मुश्किल है क्या? हिम्मत और हुल्लास, नशा और निशाना अगर सदा साथ रखेंगे तो अनेक कल्प के समान फिल पास हुए ही पड़े। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ इन 6 मास के अंदर अपने मुख्य 4 सब्जेक्ट को सामने रख करके चेक करना कि चारों में ही 5 मार्क्स हैं। ये है कम से कम 5 मार्क्स, लेकिन जो विशेष आत्माएं हैं उनको फुल मार्क्स लेने का लक्ष्य रखना है। ऐसे नहीं समझना कि 2 या 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं और 1 या 2 में कम हैं तो पास हो जाएंगे। अगर 1 सब्जेक्ट में यदि कोई फेल होता है तो क्या होता है? जिसको दोबारा पेपर देना पड़ता है उसका वह वर्ष तो खत्म हो गया ना, अर्थात ये सूर्यवंशी से तो मिस हो गया ना। सूर्यवंशी के पहले राजभाग और प्रकृति के फर्स्ट सर्व प्राप्ति सम्पन्न प्रारब्ध से तो मिस हो जाएंगे ना। हाँ, यदि चरती कला होते होते त्रेता में आकर के फुल मार्क्स लेंगे तो त्रेता युग में तो श्रेष्ठ प्रारब्ध पाए लेंगे। इसलिए ये भी नहीं सोचना, चारों ही सब्जेक्ट में फर्स्ट पुरुषार्थ है फुल पास होना अर्थात फुल मार्क्स लेना। सेकंड पुरुषार्थ सभी सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेने का है और थर्ड को स्टार तो करना ही नहीं है, क्योंकि तीसरे का तो सोचना भी नहीं है। बाबा तो फिर भी टाइम दे रहे हैं, अपने आप को सभी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लो, समझा। तीन ग्रुप आउट करने हैं। नंबर वन ग्रुप एवर रेडी ग्रुप, नंबर दो रेडी ग्रुप और नंबर तीन लेजी ग्रुप। इससे छह मास के अंदर अपने को परिवर्तन कर फर्स्ट ग्रुप में ले आना है, अर्थात एवर रेडी ग्रुप। ऑर्डर हुआ और किया, ऑर्डर मानने में लेजी नहीं बनना। इन तीन ग्रुप में स्वयं भी स्वयं के दर्पण में साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कल पहले ब्रह्मा कुमार नारद ने दर्पण में अपना साक्षात्कार किया, वैसे नॉलेज रूपी दर्पण में स्वयं ही स्वयं का साक्षात्कार करेंगे कि मैं किस ग्रुप में हूँ और किस ग्रेड में आने वाला हूँ। जैसा ग्रुप वैसे ही ग्रेड होंगे। अच्छा, सदा स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति शुभ चिंतक स्थिति में स्थित रहने वाले, हर सेकंड और हर संकल्प स्वेच्छ व्यतीत करने वाले, सदा अपने खजाने की स्मृति और सुमिरन में रहने वाले, सदा खुशी की खुराक में भरपूर रहने वाले, सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, सर्व आत्माओं के तमगुणी स्वभाव और संस्कारों से परिवर्तन करने वाले, साक्षी और सदा साथी अनुभव करने वाले, ऐसे कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई पदमा पदम भाग्यशाली आत्माओं के बाप दादा का याद प्यार होने लगे। हर तो नहीं जानते जो हमारा यह बाप है, कौन बाप है? यह बाप है, प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज नहीं होती है। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा का नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? बात समझाते हैं, आजकल के मनुष्यों की सूरत तो भले मनुष्यों की है परंतु है बंदर निकल। लक्ष्मी रानी की सूरत तो मनुष्य की है परंतु उनकी जैसे कितनी महिमा है। वो तो आते ही जाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर के जब रास्ता बताते हैं तो सजे हो जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बतला सकते, तो इनको गुरु कैसे कह सकते हैं? ब्राह्मण उनका पार्ट है, बालक को पवित्रता पर थमाना है। बल पवित्र तो रहते हैं परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। दवाई खाकर के कर्मेंद्रियों को मुर्दा बनाए देते हैं। अब इसमें तो कोई ताकत नहीं, इसमें दवाई खाके कर्मेंद्रियों को मुर्दा बनाए दिया तो फिर शक्तिशाली नहीं कहेंगे। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बने। पांच या दस साल जेल में रहे और बाहर निकल के डिंग मारने लगे, हमने दस साल पवित्रता धारण की, ये कोई पावर की बात हुई क्या? ये शक्तिशाली आत्मा की निशानी हुई क्या? तो बाप तो लक्ष्य देते हैं घर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनकर के दिखाओ। वो तो रचना तो और ही भक्तों में डाल देते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते वा स्त्री पुरुष दोनों स्वयं रहते, शादी करके फिर पवित्र रहे, उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युग। यहाँ भी बहुत बाल ब्रह्मचारी हैं, कहते हैं बाबा हमें शादी कर इकट्ठे ब्रह्मचारी में रह करके दिखाते हैं। यहाँ बाप से बल मिलता है, परमपिता परमात्मा ही आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन नहीं कर सकते, बाप को आना पड़ता है। इसलिए पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए ऐसे नहीं कि बाप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने के लिए आता है और पढ़ाई से चला जाता है, फिर देवदारी धर्मगुरु हमको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग सिखलाते रहते हैं और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर देते हैं। नहीं, परमात्मा बाप को खुद आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। पति में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठे उनको ताकत देते हैं। किस बात की क्या करें, घर गृहस्थ में रहते रहते पवित्र कैसे बने, पवित्र मार्ग कैसे स्थापन करें। बाप में तो ताकत देते हैं, जो घर गृहस्थ में रहते भी मगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा, ये दुशासन हमको नमन करते हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियां पुकारती हैं, परमात्मा आकर के इसी जन्म के लिए नगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी को ये तो नहीं थी, तो समझते हैं तो ये तो द्रौपदी थी जिसको सभा में नंगा किया गया। एक की बात नहीं है, तुम सब द्रौपदियां हो। बच्चियां पुकारती हैं, तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, बलपति तुम्हें मारे हैं पीटे हैं, परंतु तुमको सहन करना है। क्या शिक्षा मिलती है? सहन करने की शिक्षा मिलती है। क्यों सहन करें, क्यों नहीं सामना करें या सहन करें? क्यों? क्योंकि पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो नहीं बन सकती। कैसी पवित्रता, सामना किसी लिए करेंगी? सामना करेंगी तो क्या होगा और सहन करेंगी तो क्या होगा? सहन करेंगी इसलिए कि पूर्व जन्म में उनका भी पुरुष का जन्म हुआ है। उनका जो जन्म में दो पत्नियां हैं, उन्होंने भी पुरुष जन्म लिया है। पुरुष जन्म लेकर के दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में थे, उनको अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब इस जन्म में चुपचू करना चाहिए। हथियाला बांधा है सहयोग करने का, तो यहाँ बाप पहला सहयोग कौन सा बताते हैं? पहला सहयोग है घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते विकारों पर विजय प्राप्त करो। ये विजय प्राप्त करना ये सबसे पहला काम है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होनी है, वहां कोई विकारी नहीं होगा, विपरीत कर्म करने वाला नहीं होगा। जो परमात्मा ने कर्म सिखाए हैं, परमात्मा जिन कर्मों की श्रीमत देता है, वही कर्म करने वाले वहां होंगे। तो बात कहते हैं पवित्र होने के बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकती हो। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियां बनी हो। शिव शक्तियां कोई मनुष्य आत्मा की शक्तियां नहीं, किसकी शक्तियां? शिव शक्तियां बनी हो। जगत अम्मा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं, किस आधार पर? ये महिमा तुम्हारी है, फेर नहीं सकती है। ये है पतित दुनिया अथवा आश्रित दुनिया। पतित दुनिया में सब कैसे होते हैं? सब पतित होते हैं। और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। इस पतित दुनिया में कोई भी पावन हो नहीं सकता। पतित दुनिया में कोई पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में कोई पतित नहीं हो सकता। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया। तो राम आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। क्यों शिव क्यों नहीं कहा? शिव आते हैं या राम आते हैं? ऐसे क्यों कहा राम आकर के? राम वाली आत्मा तो उसी दुनिया में होती है, तो कहीं से आती है? होती तो है लेकिन उसकी भी प्रत्यक्षता तब तक नहीं हो सकती जब तक शिव बाप उसमें प्रवेश न करे। तो पवित्रता कष्ट है, काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह रहे कि हम इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सतुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे ना। तुम महिमा गाते हो आप सर्वगुण संपन्न हम नीचे पापी हैं, तो उनको बचाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने संग मेरे पर आकर के सत्य की स्थापना की है। बाप ही मन ओनली बाप, बाप के सिवाय और कोई नहीं है जो आकर के पवित्र दुनिया स्थापन कर सके। लोग तो सत्य प्रकार से ही नहीं जानते। अरे तुम पुकारते हो कि हम पतित हैं, वो पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो बदल के कैसा? अब तुम हर एक की बायोग्राफी को जानते हो, अब तुम बाप के बने हो। तुमको गॉडफादर ही बुद्धि में याद आता है। वो बाप निराकार है। कौन? जो बाप तुमको याद आता है। याद कब आती कोई चीज? याद तब आती है जब उससे कोई प्राप्ति हुई हो। अगर किसी से कोई प्राप्ति नहीं हुई है तो कोई याद क्यों आएगा? वो परम धाम में रहने वाला है। परम धाम माने परे से परे स्टेज में रहने वाला, ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला। ऐसे बात को बिल्कुल नहीं जानते। तो जानवर है ना, कैसे बात को? जो इस दुनिया में प्रवेश करता है साकार तन में, पतित तन में प्रवेश करता है, पतित दुनिया में आता है, पतित वायुमंडल में आता है, फिर भी बुद्धि योग से परे से परे रहता है। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते तो जानवर ठहरे। जानवर भी अपने माँ बाप को जानते हैं। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर रहता है। अखबार में भी देखो तो कैसे डर के मारे सबकी शक्ल है। अब बात कहते हैं मौत सामने खड़ा है, पहले खून की नदियां बहेंगी। दुनिया में जब विनाश डर कयामत बरपा होगी। रत्नागर कहा जाता है, रत्नों का आगार कहा जाता है, और फिर विषय सागर भी कहा जाता है। लक्ष्मी नायक क्षीर सागर सचिव में है। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी दूध नहीं मिलता है। और वहाँ कहाँ पड़े हुए हैं? दूध के सागर में पड़े, क्षीर सागर में पड़े हुए। यहाँ तो दूध नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सचिव में कोई चीज की कमी नहीं रहती। बड़े बड़े भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक। एक दो के दस्ते रहते हैं। फसल भी मनुष्य की है परंतु चलन गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पाप आत्मा की दुनिया तो सदाचारी कहाँ से आए? पाप आत्मा से ऐसा आचरण करेंगे, सता आचरण करेंगे या दुराचरण करेंगे? तो जरूर दुराचरण करेंगे। सदाचारी कहाँ से आएंगे? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया, समझते हैं। बल्कि जो दान पुण्य करते हैं बाप कहते हैं वो भी पाप करते हैं, क्यों? क्योंकि कुपात्र को दान देते हैं, कुपात्र को अगर दान दिया और उसने शराब पी ली, रंगीबाजी कर ली, तो क्या होगा रिजल्ट? उसको जो देने वाला है उसके ऊपर भी उसका हिस्सा पड़ जाएगा। कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो जाता है क्या? मात पिता गुरु गोसाई सब पाप आत्मा बनाने वाले, वो तो सब रावण की मत पर हैं। देवताएं कितनी पवित्र किसी थी, राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है ये भी भारतवासी नहीं जानते। किसको कहा जाता है राम राज्य, किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है? रावण राज्य माना क्या है? अनेकों का राज्य, विभिचारी राज्य, एक का कंट्रोल नहीं है। और राम राज्य माने एक का कंट्रोल, एक बात दूसरा न कोई। इस बात को भारतवासी जानते नहीं है कि राम राज्य किसे कहा जाता है और रावण राज्य किसे कहा जाता है। अगर ये बात जान जाए तो क्या करें, क्या करेंगे, किसके राज्य में रहेंगे? एक राम के ही राज्य में रहेंगे, एक राम की मत पर चलेंगे, कोई दूसरे की मत पर नहीं चले। राम राज्य चाहते हैं परंतु वो कौन है, वो हमारा कौन, राम कौन है ये नहीं जानते। उस समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उससे पाप ही पाप करके, क्योंकि यही पाप आते हैं की दुनिया। अभी तुमको चलना है बाप की मत पर, तुम समझते हम तो बाप से वर्षा लेंगे। ये अंतिम दिन पवित्र बन तेसठ जन्म तुम विचार में गए हो, अब एक दिन पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। कैसे मदद करोगे और किससे मदद करनी है? एक जन्म पवित्रता की मदद बाप को करो। कौन से बाप को? सुप्रीम सोल को। सुप्रीम सोल को पवित्रता की मदद लेने वाला नहीं है, वो तो ओवर प्योर है, सदा शिव है, वो तो सदैव पवित्र है ही है, फिर किसको मदद करें? जिसमें प्रवेश करता है वो ही आकर के सबसे जास्ती पवित्र बनता है। तो पवित्रता में मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। मदद कैसे करेंगे? पवित्र रहना पड़ेगा, धन पवित्र होगा, तुम्हारा धन पवित्र होगा, तुम्हारी वाचा पवित्र होगी तो तुम्हारा मन भी पवित्र होगा। जहाँ हमारा तन होगा वहीं हमारा मन होगा। तो पड़ेगा ऐसा क्यों कह दिया? पवित्र रहना पड़ेगा कंपल्सन क्यों? कोई स्वेच्छा से रहे? अगर स्वेच्छा से नहीं रहेगा तो पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। उसने वो रहा था फिर काम कता भी पर बैठने के अभी चैन बनी, फिर ज्ञान किताब पर बैठने से गोरा सड़क कमाले के बनते हैं। तुम ही देवता आपसे अब असुर बन गई, तो ये सत्य है। तू जी तो फिर पुजारी सन्यासी कहते हैं आत्मा से परमात्मा। हर रात दिन का फर्क हो गया, तो किसको खाले करते हैं? शब्द कहते हैं आत्मा से परमात्मा। क्या आत्मा परमात्मा हो सकती है? आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि जब कहा परमात्मा, परम बना परे से परे रहने वाली आत्मा, परे से परे पाए से बजाने वाली आत्मा, परम बना सुप्रीम, कैसी आत्मा? कि पर पाए से बजाने वाली आत्मा। तो जब परमात्मा कहा तो किससे कंपेरिजन किससे किया? आत्मा से कंपेरिजन किया ना। ये कंपेरिजन क्या सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु से किया जा सकता है? सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु से इसका कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेटे जन्म मरने के चक्कर से ही न्यारा है। तो किसने कंपेरिजन किया? जो मनुष्य आत्माओं का बाप है उसके साथ कंपेरिजन है। परमात्मा कैसा पार्ट बजाने वाली? परम पार्ट बजाने वाली। उस जैसा पार्ट और कोई बजा नहीं सकता। तो जो सन्यासी कहते हैं आत्मा से परमात्मा, उन्होंने किसको फॉलो कर लिया? उसी बाप को फॉलो कर लिया जो मनुष्य शक्ति का बाप है। क्या उनको फॉलो करना चाहिए? फॉलो करने से वो परमात्मा हो जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। परमात्मा तो जरूर एक ही पार्ट होगा आत्माओं के बीच में, परम पार्ट बजाने वाला। सब कैसे हो जाएंगे? आत्मा तो आत्मा ही रहेंगी, बच्चों को बच्चे ही कहेंगे। तो रात दिन का फर्क है। एक दो को उल्टा ज्ञान देते रहते हैं, माता पिता गुरु आदि सब एक दो को गिराते हैं। दामा अनुसार उनको गिरना ही है। गुरु तो सब नहीं किया होगा। अब तुमको गुरुओं का गुरु और पतियों का पति, बापों का बेहद का बाप मैं तुमको मिला, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को मानते तो है ना, फिर जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं। तो सोचा ने आकर के क्या किया? जयंती मनाना। किसका जयंती मनाते हैं? साकार की जयंती होती है या निराकार आत्मा की जयंती होती है? जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है उस समय जन्मदिन मनाया जाता है, जन्म माना जाता है, या जब वो प्रवेश की हुई आत्मा प्रत्यक्ष होती है, बाहर आती है, तब जन्मदिन मनाया जाता है। प्रत्यक्ष होने पर जन्मदिन मनाया जाता है ना। तो ऐसे ही परमात्मा भी सुप्रीम सोल भी आत्मा है, जिसे परम पिता कहते हैं। वो भी उस सृष्टि पर आकर के जब प्रवेश करता है ज्ञान गर्भ में, तो जो प्रत्यक्षता नहीं है, यानी 36 में परमात्मा बाप आया, उसके आने का और जाने का तो पता ही नहीं पड़ता। जैसे आत्मा गर्भ में सब प्रवेश करती है, किसी को पता पड़ता है क्या? उसकी देह से देह निकाली जा सकती है क्या? नहीं। ऐसे ही परमात्मा भी सब आता है 36-37 में, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे ही भक्ति मार्ग की परंपरा के अनुसार जन्मदिन मनाते चले आ रहे हैं, शिव जयंती मनाते चले आ रहे हैं, ब्राह्मण भी मनाते हैं भक्ति मार्ग की परंपरा के अनुसार। वास्तव में असली प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो बाद में होता है। तो बताया वो बाबा ने आकर के क्या किया? किस आधार पर उनकी जयंती मनाते हैं वो कुछ भी नहीं समझते। वो कैसे आया? सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर माने यादगार, जरूर भारत नहीं आया। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। वो भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला कुंभ का मेला कहते हैं, इस मेले में नदियों का मेला होता है। गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों का मेल कहते हैं, यादगार कहा जी संगम जी की ही यादगार है। वो मेला भी परंपरा से चल रहा है। ये सब उल्टा रास्ता बताते कौन है? जो मेला मनाते हैं कुंभ का, ये खुद कुंभ करने की नींद में सोने वाले हैं। वो जानते नहीं है कि ये नदियों का जो मेला है वो कोई पतितों के पावन बनाने वाला नहीं है। बात पूछते हैं क्या पति तो ही बनी है? पति तो थी कि बाद में बने? जो कुछ बताते हैं अपने धर्म की पुस्तक बनाते तो उसे पता ही नहीं। गुरु लोग शायद उस समय पति के कौन से गुरु लोग? सिर्फ दुनिया वाले गुरु लोग, क्या चाहे दुनिया के हो और चाहे सूचन पीरियड के ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु हों, सब इस समय पतित हैं। उन्हें पतितों की बुद्धि में ये बात आ नहीं सकती कि क्राइस्ट कैसे आता है बार बार और कब आता है और क्या करता है, वो सब पतित है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी 84 जन्म भोग पतित बने हैं, जिनको फिर बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। सुनो, लक्ष्मी नारायण को भी बाप आकर के पावन बनाते हैं, फिर अपने समय पर आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करेंगे। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई निकलता है जो समझता है। अभी तुम बेहद की बात से बेहद का वर्षा पाते हो, तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है, नई दुनिया की स्थापना के लिए जरूर बाप ही आएगा, स्थापना के लिए आएगा या फिर वो पढ़ाई पढ़ाने के लिए आएगा। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा होती है, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना जब गाई हुई है तो बाप को आने की क्या दरकार। ब्रह्मा भी तब गाया जाता है जब जब कैसे वर्षा लेते हैं, वर्षा भी कैसे लेते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं, वो कल्प कल्प कैसे वर्षा लेते हैं। सन्यासियों को जिस सन्यासी जिस बात को असंभव समझते हैं, वो असंभव बात को हम संभव करके दिखाएं, ऐसे हम पवित्र रह करके दिखाएंगे। आगे चल कर जो लोग भी मानेंगे, अभी क्यों नहीं मानेंगे, आगे चल करके क्यों मानेंगे, कारण क्या, हमको देख करके मानेंगे। अभी क्यों नहीं मानते, अभी नहीं देखते हैं तुमको, उनका देखने का पार्ट नहीं। उस समय आगे कैसे पार्ट हो जाएगा, अभी क्यों नहीं पार्ट। हाँ, क्योंकि अभी जो बात है हमको लक्ष्य मिला हुआ है घर व्यक्त में रहते पवित्र बनने का, उसमें जरूर कोई अभी कमी है, अभी परसेंटेज परिपूर्ण स्टेज में नहीं है, इसलिए अभी वो नहीं मानते। आगे चल करके वो भी मानेंगे, मानेंगे कि उनको शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। फिर सिर्फ ये सिद्ध करके बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, तब मानेंगे। तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी क्या कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है लेकिन एक व्यापी है। वो एक व्यापी मैंने एक मुकर्र रखने आकर के पतितों को पावन बनाता है, ये बात जब उनकी बुद्धि में बैठ जाएगी तो वो मानेंगे। ये तो तुम गाली देते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, गीता पीठ तो मनुष्य में नहीं आई है, तो उनकी एकदम आवरिष्ट हो जाए। ये बात अगर तुम सिद्ध कर दो क्या है, ठीक है सुन नहीं है, किसके सामने सिद्ध करनी है पहले ये बात। ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में तो ये कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है, कोई बाबा नहीं है, है? आचरण कैसे करते हैं। हाँ, वो समझते हैं कि वास्तव में परमात्मा से वो निराकार का साकार स्वरूप अगर दुनिया में कोई होता है तो सिर्फ कृष्ण बनाम ब्रह्मा का ही रूप होता है। वो ही परम पिता परमात्मा का साकार पार्ट बजाने वाला परमात्मा पार्टधारी व्यक्तित्व है एकमात्र, और कोई इस दुनिया में दूसरा नहीं होता है। तो जब तक ब्राह्मणों की दुनिया में ये गलती नहीं सुधरेगी, तब तक बाहर की दुनिया वाले की इस बात को मान लें ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब पिछाड़ी में होगा, तब होगा पिछाड़ी में जो होगा, अभी क्यों नहीं। क्योंकि अभी जो समझने वाले बच्चे हैं, जो समय को बैठ करके समझते हैं, वो इस बात की गहराई को अभी पूरा पूरा नहीं समझ रहे हैं क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है। अभी भी उनकी बुद्धि तरफ की कहाँ चली जाती है, कृष्ण की आत्मा की तरफ बुद्धि चली जाती है, तो वही आत्मा से उसे कृष्ण ही गीता का भगवान बन सकता है, और कोई मनुष्य मात्र की दुनिया में नहीं है, कोई व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जो गीता का भगवान का पाठ बजाय सके। जब तक ब्राह्मणों की दुनिया में यह भूल नहीं सुधरी, चाहे आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया हो और चाहे तीसरी दुनिया बीज रूपात्माओं की दुनिया हो, पहले सुधार कहाँ से शुरू होगा? बीज रूपात्माओं की जो रुद्रमाला की मन का रुद्रमाला के मन के यहाँ से तैयार होने, उनकी बुद्धि में जब तक ये बात बैठी नहीं है तब तक बाहर की दुनिया में तो ये बात बैठ ही नहीं सकती, तो ये काम पिछाड़ी में होगा, तो वो पिछाड़ी कब आएगी? हमारे धर्म के तो है नहीं, कौन कौन हमारे धर्म के नहीं है? जो दूसरे धर्म पिताए हैं वो हमारे धर्म के नहीं है, हमारा मानो कौन सा धर्म? सनातन धर्म, देवी देवता सनातन धर्म, देवी देवता सनातन धर्म में तो दो वंश हैं, कौन कौन से दो वंश? सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो सूर्यवंशी जो है वो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से जन्म लेने वाले हैं, और चंद्रवंशी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से समझने वाले हैं। तो जो चंद्रवंशी है उनकी बुद्धि में भी ठंडे दिमाग के हैं, जल्दी उनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है, हमारे धर्म के तो है नहीं, माने उनका धर्म कैसा है? है थोड़ा अपोजिशन का। तुम बच्चे अभी समझते हो, क्या बात समझते हो? ये परमपिता परमात्मा ही हमारा बाप है, माने कृष्ण की सोल हमारा बाप नहीं। पहले कृष्ण बतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रखते हैं, कौन सी रचना? सूक्ष्म रचना, यानी बुद्धि में, बुद्धि में पहले सूर्य में बहुत बुद्धि रूपी हथेली में ये सारी बात आती है। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही से ब्राह्मण पैदा होते हैं, ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, तो बाबा के मुखवंशावली ब्राह्मण और वो है कुशवंशावली ब्राह्मण, वो माना कौन? वो है कह करके दूर क्यों किया? वो है कुशवंशावली ब्राह्मण, माना जो बाप के संग में आकर के प्रैक्टिकल पार्ट बच्चे बनने का नहीं बजाते, वो है कुशवंशावली। उनको कोख से प्यार है, बोध से प्यार है, शरीर से प्यार है, परमात्मा बाप से निकले हुए महावाक्यों से प्यार नहीं, मुख से निकले हुए महावाक्यों से प्यार नहीं है, उसको वो जलाए देंगे, खत्म कर देंगे, मुर्गियों को फाड़ के फेंक देंगे, और तुमको तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, तुमको तो परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणी से प्यार है। तो वो है मुखवंशावली और तुम हो, वो है सुखवंशावली और तुम हो सुखवंशावली, तुमको ब्रह्मा बाप की मुख से निकली हुई बातों से प्यार है। तो बाप की मुरली से प्यार माने मुरली घर से प्यार, अगर मुरली से भी प्यार नहीं है तो परमात्मा बाप से भी प्यार साबित नहीं होता है। बाप की कीमत पर चलने से तुम पवित्र बनने वाले हो, देहदारियों को अभी तुम्हें भूल जाना, इस बात में मेहनत है, अभी नाटक पूरा होता है, जो भी आप करते हैं वो साथ चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार, बाकी बचेंगे कौन है? तो जब राम संप्रदाय भी चले जाएंगे रावण संप्रदाय भी चले जाएंगे तो बचेंगे कौन है? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े बचेंगे, क्या कहा? रावण की तरफ से बचेंगे और राम की तरफ से भी बचेंगे, दोनों तरफ से बचेंगे, ये क्या बात हुई? जब विनाश होगा तो विनाश की भूमिका में दोनों चले जाएंगे कि दोनों बचेंगे, या एक वर्ग चला जाएगा एक वर्ग रहेगा? कैसे क्यों? विनाश में अत्याचारियों का विनाश होना चाहिए, शेष्टाचारियों की स्थापना होनी चाहिए है? रामराज में आ जाएंगे तो फिर रावण राज्य तो नहीं रहा ना,
یہ کیوں کہا کہ دونوں ہی بچیں گے تھوڑے تھوڑے, آدھے پاپاتما آدھے پنیاتما بچ ڈالیں گے؟ دوسری مرلی میں بولا ایسے کیوں بولا؟ ہاں, بیج روپ میں بیج کا کبھی ناش نہیں ہوتا ہے. بیج روپ میں جو پرماتما باپ کے ایسے بچے ہیں جو پاپ کرم جاتی کرتے ہیں اور پنیہ کرم کم کرتے ہیں, اور وجے مالا میں ایک گروپ ہے, وجے مالا کا جو گروپ ہے وہ پنیہ ہی پنیہ کرنے والا ہے, پاپ کرم بہت تھوڑا کرنے والا ہے, اس لیے وہی پاپاتموں کی لسٹ اور وہی پنیاتموں کی لسٹ. جان زیادہ کس کو چاہیے, پاپیوں کو چاہیے یا پنیاتماؤں کو چاہیے؟ پاپیوں کو زیادہ جان چاہیے, وہ گندا کپڑا ہے اس کو زیادہ چاہیے جان. تو کس کو پہلے جان ملتا ہے اور کس کو بعد میں جان ملتا ہے؟ جو رودرمالا کے راجا بننے والے منتے ہیں, جنم جنمانتر راجائیں بنتے ہیں, وہ پہلے جان میں آتے ہیں, گہرائی کو پکڑتے ہیں, اس لیے وہ رودرمالا پہلے تیار ہوتی ہے. اس جان جن سے پہلے ان کی آتما کمل صاف ہونا ہے, اور جو پوتر رہنے والی رانیاں ہیں بھارت کی, ان کے جنم جنمانتر کے پوترتا کے سنسار ہیں, اس لیے وہ بعد میں آتی ہیں. اور جب آتی ہے تو پیورٹی کی پاور سے تھوڑے ہی سمے میں استھاپنا کا کاریہ سمپن کر دیتی ہے. تو راجاؤں کی ایک لسٹ ہے اور ایک رانیوں کی لسٹ ہے. راجائیں ہیں پاپ آتما کی لسٹ والے اور رانیاں ہیں پنیہ آتما کی لسٹ والے. جب راون راجی کے سب واپس چلے جائیں گے, سب کچھ بنانے والے, صفائی کرنے والے, وہ بھی بچتے تو ہیں نا, لیکن اس میں سمے چاہیے. ہم بھی چلے جائیں گے کیا کہا؟ ہم بھی چلے جائیں گے, تم کو راجائی میں جنم ملے گا. وہ پھر صفائی کرتے ہیں. بابا نے کہا ہے جہاں جیت وہاں جنم. پیارا ویور, بچے جب جنم لیتے ہیں تو کس آدھار پر ماں باپ یہاں جنم لیتے ہیں؟ ضرور جو بچے اس جنم میں آ کر کے ماں باپ یہاں جنم لیتے ہیں, اپنا کچرا صاف کرواتے ہیں ماں باپ سے, تو انہوں نے ضرور کرموں میں پورو جنم میں وجے پائی ہے ماں باپ کے اوپر, تب جنم لیتے ہیں. جہاں جنم کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کرموں پر جیت ہوتی ہے وہیں جنم ہوتا ہے. تو رام سیتا والی جو آتمائیں ہیں وہ رادھا کرشن کو جنم دینے والی نمت کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ ضرور پورو جنم میں مانے سنگم یوگ میں رادھا کرشن والی آتماؤں نے کس کے اوپر وجے پائی؟ رام سیتا والی آتماؤں کے اوپر کرموں میں وجے پائی ہے. انہوں نے رائٹیس کرم کیے ہیں اور انہوں نے ان کے مقابلے لیفٹ کا کام کیا. لیفٹ ہینڈ سے صفائی کی جاتی ہے, کام تو ذرا کٹن ہے, اور رائٹ ہینڈ سے اچھے کاری کیے جاتے ہیں, دان دھرم شیش کاری رائٹ ہینڈ سے کیے جاتے ہیں. تو استھاپنا کا کاری برہما دوارا اور وناش کا کاری شنکر دوارا. گوپ ہیں میرے لیفٹ ہینڈ. ایسا کیوں بولا مرلی؟ جو بھی پورس ہیں وہ سات دریودھن جو شاسن کی لسٹ میں کیوں ڈال دیے؟ یج کے آدھی میں بھی پورسوں نے دھوکا دیا. ماتائیں کنیائیں سب ساتھ ہی بنی رہی موسٹلی. اور جب ایڈوانس پارٹی کی شروعات ہوئی مدھیہ میں, تو بھی کیا ہوا؟ کنیائیں ماتائیں سہیوگی بنی رہی, اور جتنے بھی پورس تھے سب نے دھوکا دے دیا. ایسے ہی انت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ انت میں ہی جو وجے مالا شکتیاں نکلتی ہیں, بھارت ماتا سے شکتی اوتار انت کا یہی نعرہ. اور رودرمالا میں بھی جو شکتیاں ہوتی ہیں ان شکتیوں میں وشیش پاور ہوتی ہے پیورٹی کی پرسوں کے مقابلے. تو پرماتما باپ کی نمبر وار وہ بھی سہیوگی بنتی ہے, اس لیے راجدھانی استھاپن ہوتی ہے. تو کس کے بل پر راجدھانی استھاپن ہوتی ہے؟ فرق کا گیٹ کون کھولیں گی؟ کیوں کہا ماتائیں, کیوں نہیں کہا پتائیں؟ کیونکہ پیورٹی کی پاور ان میں وشیش ہوتی ہے. تو بھارت میں ہی جیت ہوگی, جہاں جیت وہاں جنم. باقی وہ سب خلاص ہو جائیں گے. راجا ہے آدمی جو دھنوان ہوں گے وہ بچیں گے, جن کے پاس تم جنم لیں گے. ساری سستی کا پھر تم کو مالک بننا ہے. ایسے بھی نہیں یہاں کا دھن دولت کوئی تم کو وہاں سامنے آئے گا, یہاں کی ملکیت تو ساری برسنا چکے ہیں. آج کی دنیا میں جو ملکیت مانی جاتی ہے, جس کے آدھار پر بڑا آدمی چھوٹا آدمی گنا جاتا ہے, وہ ملکیت دو کوڑی کی ملی. وہاں تم کو سب کچھ نیا ملے گا. پورے جواہراتوں کی کہانیاں بھرپور ہو جائیں گی, نہیں تو محل کہاں سے بنے گی. جب نئی دنیا آئے گی تو شروعات کہاں سے ہوگی؟ پورے جواہرات کی جان رتن تم کو بھرپور ملیں گے. انہیں جان رتنوں سے ہی نئی دنیا کی محل ماریاں تم تیار کریں گے. مانا نئی دنیا کے سنگھن روپی قلعے اور محل تیار کریں گے. تو کتنی بدھی چاہیے انہیں باتوں سے سمجھنے کی. ہم ہنسا نہیں کر سکتے, یہاں تو ڈبل ہنسا ہے. کون سی دنیا میں؟ اس دنیا میں پتنگ میں ہنسا ہوتی نہیں ہے. تم کو سرگ کہا جاتا ہے. بات کر کے تم سمجھتے ہو نا, یہ جان ساہوکاروں کے لیے بہت مشکل ہے. کیا جو ساہوکار ہیں اپن کو سمجھنے والے, باہر کی دنیا میں ہے اسکول بنے کے ساہوکار, اور براہمنوں کی دنیا میں ہے جان بنے کے ساہوکار, جن کو جان کا نشہ کر جاتا ہے, اہنکار کر جاتا ہے, ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. بابا تو غریب مزاج ہے, تم کو آ کر کے اٹھاتا ہے. غریبوں کو آ کر کے, گرہستوں کو آ کر کے اٹھاتا ہے. گرہستی بھی بیچاری گری ہستی بن جاتے ہیں. تو جو گری ہستی بن جاتے ہیں جن میں کوئی اہنکار نہیں رہتا, ان کو باپ آ کر کے مدد کرتے. تو بابا تو داتا ہے, اس کو دیتا ہے, اہنکاریوں کو دیتا ہے یا نرہنکاری غریبوں کو دیتا ہے؟ داتا ہے. یہ مکان آدمی بھی ساتھ تمہارے لیے ہیں. وشو کا مالک تم کوئی بناتا ہے؟ کون سے مکان آدمی اس کا سارا کیا؟ مدھوبن میں جو مکان آدمی بن رہے ہیں اسکول روپ میں, وہ بھی تمہارے لیے ہیں. اور اس کے علاوہ ایڈوانس پارٹی کی دنیا میں جو بے حد کے مکان تیار ہو رہے ہیں,